द काउंट डाउन बिगिन्स, और सिर्फ 5 दिन है रथ यात्रा महामहोत्सव हम लोग मनाएंगे, तो मैंने सोचा आज भी जगन्नाथ जी की ही कथा होगी, लेकिन शायद जगन्नाथ जी के बारे में ये लास्ट क्लास हो, क्योंकि आने वाले संडे से हम जन्माष्टमी के मूड में जाना शुरू करेंगे, क्योंकि शनिवार को रथ यात्रा ख़त्म होगी और फिर संडे से हम जो है 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्ण शुरू करेंगे। तो मैंने सोचा कि अगर आज जगन्नाथ जी की कथा करनी है तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। जगन्नाथ जी की कथा तो अशेष है, कितनी सारी कहानियाँ हैं, सारे तो हम नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के चरित्र के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो एक विशेष भक्त के बारे में तो चर्चा करनी ही चाहिए, नहीं तो ये कथा पूर्ण नहीं होती है। जिस तरह से हम जब श्री राम जी की कथा होती है तो हम लोग हनुमान जी के बारे में ज़रूर बात करते हैं, जब हम वामन देव की चर्चा करते हैं तो बलि महाराज की बात आती है, हम नरसिंह देव की चर्चा करते हैं तो प्रहलाद महाराज की बात ज़रूर आती है, हम अगर इस्कॉन के बारे में बात करें तो प्रभुपाद जी के बारे में ज़रूर बोलना होता है। तो उसी तरह से अगर हम जगन्नाथ जी के बारे में बात करते हैं तो इस भक्त के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो है जयदेव गोस्वामी। क्या किया है जयदेव गोस्वामी ने? गीत गोविंद का रचना की है, और हम सब जानते हैं कि गीत गोविंद जगन्नाथ जी को कितना प्रिय था। तो मैंने सोचा आज हम जयदेव गोस्वामी कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, और उनके साथ हुए जगन्नाथ जी की अनेक लीलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जयदेव गोस्वामी हमारे लिए इसीलिए भी विशेष है क्योंकि चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला के सेकंड चैप्टर में बताते हैं कैसे दिन रात चैतन्य महाप्रभु चंडीदास के भजन, विद्यापति के कृष्ण कर्णामृतम बिल्वमंगल ठाकुर का, और रामानंद राय के लिखा हुआ नाटक, और जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद, इसका बार बार वे श्रवण करते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस गीत गोविंद की विडंबना यह है कि हम गीत गोविंद को गा तो सकते हैं लेकिन गीत गोविंद समझने के लिए हमारी लेवल पे नहीं है, हम बहुत नीचे हैं, वो बहुत ही हायर लेवल पे है, बहुत ही उत्तम भक्तों के लिए है। तो इसीलिए आप देखोगे कि हम लोग कहीं भी गीत गोविंद के बारे में कोई प्रवचन नहीं होता है, उसकी डिटेल्स या उसको समझना। हालांकि हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि विग्रह के सामने गीत गोविंद गाना चाहिए, लेकिन गीत गोविंद हम गा तो सकते हैं बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने वार्निंग दिया है कि उसके मीनिंग को समझने की कोशिश मत करो या उसके मीनिंग में जाओ ही मत, सिर्फ उसका पारायण कर सकते हैं, हम गा सकते हैं क्योंकि ठाकुर जी को बहुत पसंद है। अब क्यों हम नहीं गा सकते गीत गोविंद, उसके बारे में आगे आगे आएगा। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ जयदेव गोस्वामी जो है वो केंदु बिल्व नाम के ग्राम में भोजदेव नाम के एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होता है, उनकी माता का नाम है वामा देवी, और इनके जन्म के बारे में भी बहुत सारे मत है। कोई कहते हैं कि वे दक्षिण भारत से है, कोई कहते हैं वे ओडिशा से है, कोई कहते नहीं नहीं वो बंगाल से है। अब वो जहाँ से भी है हम ये मान के चलेंगे कि वो केंदु बिल्व नाम के ग्राम से है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहीं कहे थे कि नहीं वो बंगाल से है क्योंकि लक्ष्मण सेन महाराज जिनके साथ उनका काफ़ी नज़दीक के संबंध थे, वो लक्ष्मण सेन महाराज बंगाल के राजा थे, तो हम ये मानते हैं कि शायद उनका जन्म वहीं कहीं हुआ था। अब ये केंदु बिल्व नाम ग्राम में उनका जन्म हुआ था जयदेव गोस्वामी का, और उनके जीवन काल में सबसे ज़्यादा अगर हम उनकी कथा सुनते हैं तो दो लोग का विशेष नाम आता है, एक उनकी पत्नी पद्मावती और दूसरा महाराज लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के साथ उनका विशेष संबंध था। ये महाराज लक्ष्मण सेन की कहानी भी बहुत ही अद्भुत है क्योंकि ये जो महाराज है उनके वंश में कोई भक्त नहीं है, उनके जो पिताजी थे बल्लाल सेन, वे भी भक्त नहीं थे, और बल्लाल सेन के जो पिताजी और दादाजी थे वे भी भक्त नहीं थे, वे निराकार ब्रह्म में मानते थे। उन दिनों में बंगाल में बुद्धिज्म का बहुत बोलबाला था, तो सारे बुद्धम शरणम गच्छामी, ये सब संघम शरणम गच्छामी करते रहते थे। तो बल्लाल सेन के जो दादाजी है उन्होंने थोड़ा सा स्टेप लिया, बुद्धिज्म को बंगाल से बाहर निकाला, और उन्होंने वहाँ पे जो है अद्वैतवाद की स्थापना की। लेकिन वो भी जो है भगवान के साकार रूप में नहीं मानते थे, वो भी निर्विशेष ही थे। उसके बाद में जो बल्लाल सेन जब राजा बने तो वे भी जो है वह तो उससे भी गए गुजरे थे, निराकार ब्रह्म तो नहीं, वे तांत्रिक विद्या में मानने लगे थे, तो वो तंत्र विद्या वगैरह करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि लगातार 4 महीने तक वो राज्य में वापस आए ही नहीं, सब उनको ढूंढते रहे कहाँ है। तो किसी ने कहा कि गंगा के उस किनारे वे तंत्र मंत्र कुछ कर रहे हैं, किसी ने कहा नहीं नहीं वो तपस्या कर रहे हैं। अब लक्ष्मण सेन तब छोटे थे, अब उनको तैरना बहुत अच्छा से आता था, उन्हें संगीत बहुत अच्छा से आता था, उन्हें शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान था, ऑल टुगेदर एक बहुत अच्छे गुणों वाले कुमार थे, वे युवराज थे। तो उन्होंने क्या किया, वो जब सब बता रहे थे कि गंगा के उस ओर वो कोई तपस्या कर रहे हैं, तो वो गंगा में झाप लगाते हैं, गंगा में कूद जाते हैं, और वो उस किनारे तक तैर के जाते हैं और ढूंढते हैं उनके पिताजी कहाँ हैं। और तब वो देखते हैं कि उनके पिताजी तो जो है वे शराब वगैरह पीते हुए कुछ स्त्रियों के साथ वहाँ संग कर रहे हैं और कोई तांत्रिक विद्या का कोशिश कर रहे हैं। तब उनका मन बहुत खराब हो जाता है, वो फिर वापस तैर के आते हैं और उनके मंत्रियों को बोलते हैं कि आपको ऐसे राजा को नहीं मानना चाहिए, ये गलत रास्ते में है। तो फिर मंत्री भी जो है वो सब वहाँ जाते हैं और ये दृश्य को देखते हैं और बल्लाल सेन से बात करते हैं कि तुम गलत मार्ग में जा रहे हो। तो बल्लाल सेन बोलता है कि मुझे और राज्य में इंटरेस्ट नहीं है, आप किसको देंगे राज्य, वो क्या करेंगे करो, मैं तो यहीं रहूँगा। तो फिर ये मंत्री लोग जो है इनकी छोटी उम्र में ही लक्ष्मण सेन को राजा बना देते हैं। अब लक्ष्मण सेन जो है अपना परिपालन करना शुरू करते हैं, और वे जब काफ़ी यंग थे तब एक दिन जो है वे घूमते घूमते केंदु बिल्व ग्राम में पहुंच जाते हैं। अब इस केंदु बिल्व ग्राम में जयदेव गोस्वामी एक झाड़ के नीचे बैठे हुए भजन गा रहे हैं, उनका आवाज़ बहुत ही मीठा था, और क्योंकि वह भगवान के शुद्ध भक्त थे जब वे गाते तो सब रुक जाते। तो अब जब ये लक्ष्मण सेन राजा जो है शिकार कर रहे थे, सी वो भी एक भक्त ही थे, कुछ राजा कुछ शिकार इसीलिए करते थे कि कभी कभी जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं जो गांव वालों को तंग करते हैं या उन्हें मुसीबत करते हैं, तो वैसे जंगली जानवरों को राजा मारते थे। तो ये जब अपना धनुष निकालते हैं और बाण को मारते हैं, उन्होंने बाण केंद्रित किया था कोई और जगह पे, लेकिन जब जयदेव गोस्वामी गाना शुरू करते हैं तो बाण वहाँ छोड़ के जयदेव गोस्वामी की तरफ जाता है, और बाण में तो कोई जीव नहीं है, उसमें तो कोई प्राण नहीं है, फिर भी जयदेव गोस्वामी का गाना सुनते सुनते वो नृत्य करने लगता है। तो ये सोचते हैं कि बाण को क्या हुआ, उस जगह क्यों भाग रहा है। तो फिर वो ऐसे करके वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो एक अच्छा संत बैठे हैं, इतना सुंदर भजन कर रहे हैं, तो वो उनका भजन सुनने लगते हैं। और जयदेव गोस्वामी जितना बार भगवान का भजन करते हैं बीच बीच में क्या होता है, बेहोश हो जाएंगे कृष्ण कृष्ण करते हुए। अब वहाँ पे आसपास में कोई थे नहीं, लक्ष्मण सेन महाराज ही थे, तो उनके गोद में ही कृष्ण करते करते गिर गए। अब लक्ष्मण सेन महाराज उनको हवा दे रहे थे, उनको ठीक कर रहे थे, पास में देखे छोटी सी कुटिया है तो वहाँ जाके उनको लिटा दिया। अब उसने देखा आसपास में तो कोई है नहीं, तो इस साधु को ऐसे छोड़ के कैसे चले जाए, तो जब तक वो होश में नहीं आएगा मैं यहीं रहूंगा। तो जैसे देखा कि वो होश में आ गए, तो जयदेव गोस्वामी जब होश में आए तो उन्होंने पूछा कृष्ण कहाँ है। अब इनको कुछ पता नहीं है, तो बोला कृष्ण कौन है उसना भी उनको माइंड में नहीं है, होगा कोई उनका दोस्त वगैरह, यहाँ तो कृष्ण नहीं है। तो जैसे ही जयदेव गोस्वामी ने सुना यहाँ तो कृष्ण नहीं है, वो फिर से मूर्छित हो गए। अब लक्ष्मण सेन बोला सोचा कि ये तो मेरा गलती हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था कृष्ण है। तो दूसरी बार जब वो मूर्छा से बाहर आए, उन्होंने पूछा कृष्ण कहाँ है, जयदेव गोस्वामी ने बोला ये तो यही है। तो जयदेव गोस्वामी ने बोला कृष्ण यही है, फिर मूर्छित हो गए। अब इसको लगा ये तो बड़ी समस्या हो गई, कृष्ण है तो मूर्छित हो जाते, कृष्ण नहीं है तो मूर्छित हो जाते, मैं तो यहीं बुरा फंस गया, और आसपास में कोई है भी नहीं कि इसको मैं छोड़ के यहाँ पे चला जाओ। तो लगातार 10 दिन वहां पे जो है उन्होंने जयदेव गोस्वामी की सेवा की। जब उठते थोड़ा पानी पिलाते वो फिर बेहोश हो जाते। उसके बाद जब जयदेव गोस्वामी होश में आए तब उन्होंने लक्ष्मण सेन से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही और उन्हें भगवान के बारे में बताया और लक्ष्मण सेन काफ़ी कुछ सीखे और फिर वह अपने राज्य वापस चले गए। लेकिन राज्य में वापस जाने के बावजूद भी उन्हें हमेशा जयदेव गोस्वामी की याद आती, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें बोलूं कि मेरे साथ रहे, मेरे राज्य में रहे। तो फिर जाते उन्हें इन्वाइट करने के लिए कि आप आइए ना हमारे, मेरे साथ रहिए। तो जयदेव गोस्वामी बोलते मैं राजा के साथ तो नहीं रहूँगा, मैं यही ठीक हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं राजभवन में ऐसी बड़ी बड़ी जगह रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर लक्ष्मण सेन एक ऑप्शन देते हैं, क्यों ना आप चंपा घाटी में रहिए, जो चंपा घाटी अभी भी आप नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जाओ तो आप उस जगह को देख सकते हो, बहुत सुंदर जगह है। तो आप चंपा घाटी में रहिए। तो क्यों चंपा घाटी में क्यों रहूं? तो कहते कि वहां बहुत सारे अलग अलग साधु रहते हैं, इनकी चिंता ये थी कि घड़ी घड़ी मूर्छित हो जाने से कोई तो रहे आसपास में। बोले आप चंपा घाटी में रहिए, वहाँ आसपास में बहुत सारे साधु हैं और सुंदर रमणीय स्थल है। चंपा हाटी माने मार्केट, तो वहाँ बहुत ज़्यादा चंपा के फूल उगते थे और वहाँ पे बेचते थे। तो बोलते आप वहाँ रहिए। ऑल्सो वो जगह बहुत ही अच्छी या तीर्थ मानी जाती है, क्योंकि सत्य युग में द्विजवाणी नाथ को भगवान ने उधर दर्शन दिया था। तो बोला आप वहां रहिए। तो ये मान गए और वो चंपा घाटी में रहने लगे। अब लक्ष्मण सेन अपने उसमें, ये चंपा घाटी में। अब थोड़ा दिन के बाद क्या हुआ, जब ये भगवान का वहां चंपा घाटी में स्मरण कर रहे थे तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु उन्हें वहां दर्शन देते हैं। अब आप नोट करिए, चैतन्य महाप्रभु का तब आविर्भाव नहीं हुआ था, जयदेव गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु से 300 साल पहले आए हैं। उसका मतलब चैतन्य महाप्रभु का अभी आविर्भाव होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने क्या किया, इनको दर्शन दे दिया। अब ऐसा रूप तो कभी जयदेव गोस्वामी ने सुना ही नहीं है, इतने सुंदर मुखार विंद गौरांग रंग के, वो बड़े बड़े हाथ, इतने सुंदर गौरांग महाप्रभु का रूप। बोला ऐसा सुंदर रूप तो मैंने आपका पहले कभी नहीं देखा। फिर ठाकुर जी उनको बताते कि मैं इसी रूप में आने वाला हूँ, अभी कलयुग में इसी रूप में मैं आने वाला हूँ और मैं इसी जगह में नवद्वीप में इस चंपा हाटी में मैं बहुत सारी लीलाएं करने वाला हूँ। तो ये बहुत खुश हो जाते हैं कि मैं तो सही जगह पे आया हूँ जहाँ ठाकुर जी आने वाले हैं। लेकिन फिर गौरांग महाप्रभु बोलते हैं तुम ऐसा करो, तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ। बोलते किस लिए जगन्नाथपुरी चले जाओ, जब आप यहीं आने वाले हो मैं यहीं रहूंगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, तो अब जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ जगन्नाथ जी की सेवा करो, मैं वहाँ भी आने वाला हूँ, मैं जगन्नाथपुरी में भी रहूँगा, तुम उधर जाओ। तो उनकी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन जब ठाकुर जी का आदेश हुआ तो फिर वह चल पड़ते हैं। कितनी समझने वाली बात है यहाँ पे कि हमारा जीवन ठाकुर जी की योजनाओं के अनुसार चलना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार चलाते हैं और ठाकुर जी इतने चंचल है, वो हर मिनट योजनाएं बदल देते हैं, कभी एकदम यू टर्न भी ले लेते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि अरे अभी सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, फिर सडनली सब ऐसे क्यों हो गया। तो ये चंचल है ना, कभी भी अपनी योजनाएं बदल लेते हैं। लेकिन वो जब भी अपनी योजनाएं बदले, हम उनकी योजना के अनुसार चलने के लिए तैयार रहे, ये है भक्त का जीवन, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं माता जी हम लोग कितने अनफॉर्चुनेट है, जो लोग वृंदावन में रहते हैं वो लोग कितने लकी है, वो लोग व्रजवासी है, वो लोग वृंदावन में रहते हैं। लेकिन व्रजवासी का सही मतलब क्या है? व्रज माने जो चीज़ मूव होती है, हिलना चलना, उसको व्रज बोलते हैं। व्रजवासी माने वहाँ के लोग क्या करते हैं, चलते हैं। कैसे चलते हैं? कृष्ण की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जहाँ अपना उनका कोई प्लान नहीं होता है, कृष्ण जैसे चलाते हैं वो वैसे चल पड़ते हैं, इसलिए उनको व्रजवासी कहा गया है ना। कृष्ण ने कहा इंद्र पूजा बंद करो तो बंद कर दिया, गोवर्धन पूजा करो तो गोवर्धन पूजा किया, आंखें बंद कर लो तो आंखें बंद कर ली गोपबाल ने, भगवान ने फिर क्या किया, सारी दवाग्नि अपने मुँह में ले ली। तो हम अगर सही मायने में व्रजवासी बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, कृष्ण के योजनाओं के अनुसार हमें चलना है। कृष्ण क्या चाहते हैं, हमारी योजना नहीं, हमारी बुद्धि से नहीं। यहाँ पे जयदेव गोस्वामी चल पड़ते हैं और फिर वो जगन्नाथ जी के पास, जो जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। अब जगन्नाथपुरी में रोज जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और उनका जो प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद, गीत गोविंद बहुत विशाल रचना है, ये कोई एक दो भजन नहीं है, इसमें कम से कम 24 भजन है। और जिस तरह से हमारे श्रीमद् भागवतम में जैसे स्कंद होते हैं ना, वैसे इसमें भी 12 स्कंद है। स्कंद नहीं बोलते इसको, ये लोग सर्ग बोलते हैं, 12 सर्ग है और 12 सर्ग में 24 अलग अलग भजन है। और ये पूरी पूरी रचना करने के लिए जयदेव गोस्वामी को अराउंड 10 साल लगे थे, मतलब एक ही साथ में उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, जैसे जैसे उनको वो लीलाएं दिखाई देती वैसे वैसे वे लीला लिखते जाते थे। तो अब जगन्नाथपुरी पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, वे तो ब्रह्मचारी थे ना, तो उनके लिए रसोई कौन बनाएगा, खाना वाना कौन बनाएगा, तो जहाँ जो प्रसाद पड़ा है वो खा लेते। तो जगन्नाथपुरी में एक विशेष बात यह है कि प्रसाद को हमेशा पवित्र माना जाता है। अगर कुत्ता भी उस प्रसाद को छू ले तो उसके बाद में भी अगर वो प्रसाद बचा है तो कोई भी खाएगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं ये तो किसी जानवर ने छू लिया है तो अब हम नहीं खा सकते, प्रसाद मतलब पवित्र। तो एक बार जगन्नाथ जी ने देखा कि जयदेव गोस्वामी बैठे हुए हैं वहाँ छोटे से कुंड में, जगन्नाथ जी का प्रसाद है तो वो भी खा रहे हैं, उसी में से कुत्ता भी खा रहा है। ठाकुर जी ने सोचा मुझे कुछ अरेंजमेंट करनी है इसके लिए, कोई इसका टेक केयर करे। अब कहानी यहाँ पे हम रोकते हैं, अब जाते हैं हम जयदेव गोस्वामी की पत्नी, उनका जन्म कैसे हुआ, तभी तो मिलेंगे ना दोनों। तो देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, और कहाँ से थे वो, आंध्र से थे, आंध्र प्रदेश से, और उनको कोई बच्चा नहीं था। तो वे पति पत्नी गए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है जिसे उसको महादधि कहते हैं, बे ऑफ बंगाल जो है उसको महादधि कहते हैं, अरेबियन सी को जो है पश्चिम धधि कहते हैं। अब इस महादधि जो ओशन है, जो समुद्र है, उसमें भी सबसे पवित्र स्थान समुद्र का है जगन्नाथपुरी। मतलब समुद्र के पूरे किनारे पे या समुद्र में बहुत सारे तीर्थ स्थान है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जगन्नाथपुरी धाम। तो इसलिए माना गया है शास्त्र में भी कि जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहाँ के समुद्र में अगर हम स्नान करते हैं तो उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं। अगर आप जगन्नाथपुरी जाओ और अगर आप जगन्नाथ जी के दर्शन ना कर पाओ तो, लेकिन जगन्नाथ जी के जो पुरी का जो समुद्र है अगर उसमें भी आप स्नान करो तो आपको सेम फल मिलता है। तो ये दोनों वहाँ स्नान करने लगे, स्नान कर रहे हैं, फिर बाहर आ रहे, फिर स्नान कर रहे, फिर बाहर आ रहे, तो वहाँ किसी पुजारी ने देखा, बोला तुम क्या कर रहे हो, पति पत्नी मर जाओगे ठंड से, नहा रहे हो फिर आ रहे हो फिर नहा रहे हो, सुबह से मैं देख रहा हूँ शाम हो गई, तुम चाहिए क्या? नहीं नहीं हमको बच्चा चाहिए, किसी ने बोला कि ऐसा करने से जो है भगवान ठाकुर जी का अनुग्रह हमारे पे होगा। ये पुजारी ने बोला ऐसा नहीं, तुम जाओ मंदिर में जाओ, ठाकुर जी के लिए कोई भेंट ले जाओ और उनका दर्शन करके उनसे मांगो। तो फिर वह एक क्या करते हैं, एक पद्म का फूल, कमल फूल लेके जाते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। अब जगन्नाथ जी का दर्शन मतलब भीड़ वगैरह होती है, सोचते जगन्नाथ जी ने हमारी बात सुनी या नहीं सुनी। तो वो क्या करते हैं, रात को मंदिर के बाहर ही दोनों लेट जाते हैं। अब रात को सपने में दोनों पति पत्नी क्या देखते हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र विग्रह पूरा पूरा ऐसे चल के उनके पास आ रहा है। अब इमेजिन करिए कितना सुंदर, दोनों पति पत्नी को सेम सपना, जगन्नाथ जी ऐसे ऐसे करके चल के आ रहे हैं, बोलो तुमको क्या चाहिए? अभी दोनों बोलते हैं हमें बच्चा चाहिए। तो बलदेव पूछते क्या चाहिए, बेटा या बेटी? तो बोलते जो भी हो, लेकिन हम एक वादा करते हैं, जो भी होगा बेटा या बेटी हम आपकी सेवा में लगा देंगे। फिर बलदेव पूछते अगर हमारी सेवा में लगा रहे तो तुमको चाहिए क्यों? कहते नहीं नहीं हमें एक आनंद, बच्चे को बड़े करने का एक आनंद चाहिए, उसके बाद जब सही उम्र हो जाएगी हम आपकी सेवा में अंकित कर देंगे। और जब सपना खुलता है दोनों पति पत्नी का बहुत खुश, एक दूसरे से शेयर करते, तुम्हें भी ये सपना आया, मुझे भी यही सपना आया। और फिर वहां से जो है और थोड़े तीर्थ में वो जाते हैं और फिर उनको बेटी का जन्म होता है पद्मावती। अब ये पद्मावती नाम क्यों दिया, क्योंकि भगवान को पद्म दिया था और भगवान ने क्या किया, उनको सुंदर सी बेटी प्रदान की, और पद्मावती राधा रानी का भी दूसरा नाम है तो बेटी का नाम पद्मावती रखते हैं। अब ये पद्मावती क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद है, इतनी सुंदर और इतनी सुशील, इतनी गुणवती, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पद्मावती को नहीं आती। खाना बनाना बोलो एक्सपर्ट, गाना बोलो एक्सपर्ट, नाचना बोलो एक्सपर्ट, और सुंदर स्वभाव, स्त्री का जैसे स्वभाव होता है, बहुत ही विनयी, कोई अहंकार नहीं। तो बहुत खुश, माँ बाप उनको बड़े कर रहे हैं। अब जब उसकी उम्र आ गई शादी की, तब इनको याद आया कि हमें तो इनको जगन्नाथ जी को अंकित करना है, तो लेके गए हैं जगन्नाथ जी के पास। देखिए कितनी सुंदर बात, भगवान से जो प्रॉमिस किया पूरा किया। तो लेके गए जगन्नाथ जी के पास और बोला कि भाई आपको मैंने प्रॉमिस किया था, तो ये रही मेरी बेटी, अब आप जो करेंगे करिए। हाँ सी, वही अगर हमारे जीवन में ऐसा हो तो हम सोचेंगे कि वो तब की बात और थी, अब कैसे हो सकता है। प्रॉमिस फुलफिल करने में तो हम बहुत वीक है। तो लेकिन ये एकदम बोले कि ये रहे आपको जो प्रॉमिस किया था, अब आप इसका क्या करेंगे करिए। अब उन दिनों में एक प्रथा थी देवदासी की प्रथा। देवीदासी की प्रथा मतलब कुछ स्त्रियों की या कुछ लड़कियों की शादियां नहीं किया जाती थी, उनको भगवान की सेवा में अंकित किया जाता था। जगन्नाथ जी वहां पे बोले, बोला नहीं नहीं तुम्हारी बेटी के लिए मेरा कोई दूसरा प्लान है। तो क्या प्लान है? बोला देखो तुम बाहर जाओ, वहां पे तुम देखोगे गली के उस पे तुम देखोगे जयदेव गोस्वामी नाम का एक भक्त है जो बहुत सुंदर गाता है भजन, मेरा भजन गाता है। तुम ऐसा करो तुम्हारी बेटी को उसको दे दो, उससे तुम शादी करवा दो। तो बोला ठीक है। तो अपनी बेटी को लेके गया, सब जगह ढूंढ रहा है कौन है जयदेव गोस्वामी। फिर देखा कोई एक साधु बैठा हुआ है भजन गा रहा है। बोला तुम्हारा नाम जयदेव गोस्वामी है? बोला हाँ मेरा नाम जयदेव है, बोलिए। बोला कुछ नहीं, बधाई हो तुम्हारी शादी हो गई है, ये तुम्हारी पत्नी है, मैं चला। बोला क्या, एक मिनट, हलो हलो एक मिनट, चले गए इसको वहां पे छोड़ के। और ये प्रणाम कर रही है स्वामी, बोलते तुम एक्सक्यूज मी, मैं तुमको नहीं रख सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि जगन्नाथ तुमको मेरे पास छोड़ने के लिए बोला। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को रहने के लिए घर भी नहीं है मेरे पास, मैं तुमको कहां से रखूं। अब ये लड़की रोने लगी, लेकिन फिर मैं कहां जाऊं, मैं तो किसी को नहीं जानती, मेरे पिताजी तो आपके पास ही छोड़ के गए, मैं तो आपके पास ही रहूंगी। अब जयदेव गोस्वामी ने सोचा ठीक है पूरा दिन जाने दो, रात को भाग जाऊंगा, जब ये सो जाएगी रात को मैं भाग जाऊंगा। तब वो जहां जा रहे उसके पीछे पीछे वो लड़की आ रही है, उसको पता नहीं जाना कहाँ है। अब रात को जो है जयदेव गोस्वामी झाड़ के नीचे सो गई, लड़की भी सो गई। अब जयदेव गोस्वामी को तो एक्टिंग करनी थी सोने की, लेकिन जगन्नाथ जी की लीला ऐसी हुई उनको सच में नींद लग गई। और जब उनको नींद लग गई तो स्वप्न में जगन्नाथ जी बोले कि देखो जयदेव ये मेरी योजना है तुम्हारे लिए, तुमको शायद ब्रह्मचारी बनना था लेकिन ये मेरी योजना है, ये तुम्हारी सेवा करेगी, ये तुम्हारे भजन में बाधा नहीं डालेगी, बहुत अच्छी भक्त है वो, तुम्हारी भक्ति जीवन में सहायता करेगी, तुम इसे अपना लो। तो फिर दूसरे दिन जब जयदेव गोस्वामी उठते हैं वो उसे अपनी पत्नी के जैसे अपना लेते हैं। अब अकेले थे तब ठीक थे, अब पत्नी है तो अब सब कुछ चाहिए, सारी अरेंजमेंट्स चाहिए। तब सोचा अभी तो मुझे कुटिया बनानी पड़ेगी क्योंकि अब रहेंगे कहाँ, इसकी रक्षा करनी है, अब मेरे को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। तो अब वो कुटिया बनाना शुरू किए। तो कुटिया बनाना मतलब क्या करना है ना, बैम्बूस लगाना है, उसके ऊपर में घास है, रस्सी बांधना है, तो वे सब करने लगे। तो ऊपर में वो रस्सी बांध रहे थे और नीचे से जो है उनकी पत्नी उनको रस्सी दे रही है, लकड़ी दे रही है, तो सब कुछ हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद जब वो बनाते 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 जो छत होती है, छत बनाते बनाते जब ऊपर आए, तब जब नीचे जो होल होता है उसमें से उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी तो खाना बना रही है। सोचा कि अगर ये खाना बना रही है तो मुझे लकड़ियाँ रस्सी कौन दे रहे हैं। तो फिर वो झुक के नीचे देखते देखते माधव कृष्ण खुद उनको लकड़ियाँ दे रहे हैं। तो बोला कि मैं इसीलिए शादी नहीं करना चाह रहा था, अभी आपकी सेवा मैं क्या करूँगा, आप मेरी सेवा करना शुरू कर दी। और फिर छलांग लगा के नीचे उतरते हैं, बोलते माधव आप मेरी सेवा मत करिए। तो फिर ऐसे करके जो है वो कैसे भी करके अपनी कुटिया ख़त्म करते हैं और दोनों वहां पे रहने लगते हैं। अब ठीक ही चल रहा है, ये गीत गोविंद की रचना करते हैं, गीत गोविंद का भजन लिखते रहते हैं। और वो जो भी भजन में लिखते हैं उनकी पत्नी उसी भजन को नृत्य करके दिखाती है जगन्नाथ जी के सामने। तो बहुत सुंदर चल रहा है सब कुछ। अब एक दिन ऐसा होता है, जैसे बहुत सारी अलग अलग इसकी कथा है, एक प्रसिद्ध कथा मैं बताती हूँ। एक दिन ऐसा होता है कि वे कुछ लिख रहे हैं। अब जब जयदेव गोस्वामी कुछ लिखते थे तो अपनी बुद्धि से नहीं लिखते थे, वो एक्चुअली देखते थे लीला होती हुई, उन्हें दिखाई देता था और वो हंस पड़ते और फिर वो लीला को लिखते। अब आज उन्होंने देखा ऐसा अजीब, उन्होंने देखा कि लीला में ऐसा है, राधा रानी कृष्ण का इंतजार कर रही है, कृष्ण बहुत देरी से आते हैं, और जब कृष्ण देरी से आते हैं तो राधा रानी जब उनके पास जाती है तो राधा रानी देखती है कृष्ण के चिन्ह पे यहाँ पे एक बिंदी लगी हुई है। तब राधा रानी बोलती है कि ये तो स्त्री की बिंदी है, तो तुम्हारे पे कैसे आई? तो कृष्ण ने बोला अच्छा नहीं तो मुझे पता नहीं कहाँ से आई। तो बोलते कि नहीं नहीं तुम जरूर किसी और गोपी को मिलने के लिए गए हो। तो कृष्ण बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ से आई। राधा रानी मानती नहीं है, रूठ के बैठ जाती है। तब कृष्ण सोच के बोलते अच्छा अच्छा मुझे याद आया, मैं एक्चुअली तुम्हारे लिए फूल लेने गया था, वहाँ पे और भी गोपी आई थी फूल लेने के लिए, तो अब सब साथ में मिलके फूल चुन रहे ना, तो कभी कभी जैसे वो लोग फूल चुनते चुनते जो है उनकी बिंदी उड़ के मुझ पे आ गई होगी, मेरे को पता ही नहीं ये बिंदी कहाँ से आई। राधा रानी ने बोला ये सारे बहाने छोड़ो, मुझे नई बात करनी है तुम्हारे साथ, तुम हमेशा मुझे चीट करते हो। अब कृष्ण ने इतना कुछ बोला, राधा रानी इतना डांटी, फिर भी अब तो कृष्ण ने सोचा अब तो लिमिट हो गया, मान ही नहीं रही है, अब करे तो क्या करे। अब उनका अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र उन्होंने डाला, बोला देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवाय मेरे मन में कोई है ही नहीं, और राधे मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हारे जो पैर है, तुम्हारे जो पाद पाद पद्म है तुम मेरे सिर पे रख दो, तुम्हारे पैरों की धूली मुझे चाहिए। जब जयदेव गोस्वामी ने ये देखा तो एकदम एक मिनट के लिए ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, ये तो गलत होगा, भगवान जिसके पैरों की धूली, ब्रह्मा और शिव सारे साधु संत जिनके पैरों की धूली के लिए तड़पते हैं, वो राधा रानी से कह रहे कि तुम्हारे पैर की धूली, और लोग इसको समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, साधारण लोग क्या समझेंगे, एक बॉलीवुड मूवी जैसा हीरो हीरोइन की बात समझेंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे इसका भाव। तो उन्होंने सोचा ये लिखना तो ठीक नहीं रहेगा, उसमें लाइन ऐसा था देही तव पाद पल्लव उदारम श्री राधे, श्री राधे तुम्हारा देही तुम दो क्या, तव पाद पल्लव तुम्हारे पाद पद्म मेरे सिर पे तुम रख दो राधे। तो सोचा ये लिखना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने छोड़ दिया लिखना, सोचा थोड़ा सा माइंड में पहले चेंज करता हूँ, मैंने मुझे कुछ गलत दिखा क्या, मुझे ये लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि देखो मैं ऐसा हूँ, मैं नहा के आता हूँ नदी में, आने के बाद जो है मैं लिखूँगा। पत्नी ने बोला ठीक है, वो चले गए नहाने के लिए। अब जयदेव गोस्वामी जब भी नहाने के लिए जाते हैं कम से कम 4-5 घंटा लगता है, क्योंकि वो जब नहाने के लिए जाएंगे वहाँ नदी को देखेंगे, फिर नदी को देखेंगे तो बोलेंगे ये तो यमुना है, फिर यमुना से उनको कृष्ण याद आएंगे, फिर कृष्ण से वो कोई भजन गाएंगे, फिर भजन गा के रोते हुए वहीं बैठ जाएंगे, फिर कोई याद कराएगा आप नहाने के लिए आए, अच्छा अच्छा मैं नहाने के लिए आया था ना, हाँ हाँ ठीक है ऐसा। तो 3-4 घंटे तो मिनिमम उनको लग जाता है, उनकी पत्नी को भी आदत ही है अब 3-4 घंटे के बाद ही आएंगे, लेकिन इस बार 1/2 घंटे में आ गए। दरवाज़ा नॉक किया, पत्नी ने खोला, बोला आप इतनी जल्दी आ गए? बोलता हाँ आज मैं जल्दी नहा लिया, मुझे वो लिखना है ना, तो बहुत अच्छा। तो अपनी पत्नी ने बोला कि पहले प्रसाद ले लीजिए, ऑलरेडी देरी हो गई है। बोला ठीक है, तो उसने प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद में वो कमरे में गए, उन्होंने अपना लाइन लिखा और फिर वे सो गए। अब उनकी पत्नी की जो आदत थी, एक्चुअली ये हमारा भारतीय कल्चर है कि पहले पति खाने के बाद ही जो है पत्नी खाती थी, पति को गुरु मानते थे। अब तो मुझे ये बोलने में ही डर लगता है, पिछली बार मैंने कुछ बोल दिया इतने लोग तो गालियाँ देने लगे, मैंने इतना ही बोला था कि पति को नाम से नहीं बुलाते, उसमें तो मेरे को इतने लोग नेट पे डांट दिए, बोला अगर पति को नाम से नहीं बुला सकते तो पति को भी पत्नी को नाम से नहीं बुलाना चाहिए। मैंने बोला नमस्कार, मैं और बोलू ही ना ये सारी बातें। तो अब ये है, तो उन दिनों में ऐसा था, मैं किसी को भी नहीं बोल रही हूँ ऐसा फॉलो करने के लिए, मुझे कोई गाली मत दीजिएगा, लेकिन जो भक्त लोग हैं ऐसा फॉलो करना ठीक रहेगा। तो पति खाने के बाद खाना चाहिए, तो पति ने खाना खा लिया तो वो खाने लगे। अब जब वो प्रसाद ले रही थी तब आए हमारे ओरिजिनल जयदेव गोस्वामी, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अब दरवाज़ा खटखटाया तो ये अब खाने में मस्त थी, तो देखा यूजुअली तो 1 मिनट में जो है उठ के खोल देती है, तो उन्होंने खिड़की से देखा तो ये खाना खा रही है। जयदेव गोस्वामी बोला पागल तो नहीं हो गई, मेरे को खिलाए बिना खा लिया, तो वो और भी जोर जोर से खटखटा रही है। अब उन्होंने उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, दरवाजा खोलने से वो चक्कर खा गई, बोले आप बाहर कैसे आ गए। तो इमीडिएटली जो है उसको लगा कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई अजनबी है, इमीडिएटली दरवाजा उसने बंद कर दिया। जयदेव गोस्वामी ने बोला कि तुम ये क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो, आप कौन है। तो फिर वो खिड़की के पास से आए, बोला तुम ऐसा क्यों कर रही हो, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो। बोले मुझे समझ में नहीं आए आप तो, एक मिनट। तो वो फिर अंदर भागी, कमरा खोला, देखा वहां पे हमारे ठाकुर जी सो रहे, जयदेव गोस्वामी के रूप में जो आए थे वो सो रहे हैं। फिर बाहर आई, खिड़की से देखी, फिर जयदेव गोस्वामी, उसको समझ में नहीं आ रहे दो यहाँ कहाँ से आ गए, वो दरवाजा नहीं खोल रही है। जयदेव गोस्वामी खिड़की के बाहर से बोल रहे हैं कि लोग देख रहे हैं तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो, कब से क्या सोचेंगे, दरवाजा खोलो। अब ये बोल रहे कि आप कौन है। अब जयदेव गोस्वामी ने बोला कि कहीं तुमने मेरा रचना पढ़ ली क्या, पहले तो लोग सोचते थे कि मैं बावला हो गया, मुझे लगता तुम बावरी हो गई हो, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो, मैं हूं तुम्हारा पति, दरवाजा खोलो, लोग देख रहे मुझ पे हंस रहे, दरवाजा खोलो। इसने सोचा ठीक है पहले दरवाजा तो खोलते, दरवाजा खोला फिर से बंद करके इनको बिठाए, बोला आप कौन है। फिर उसको बोला एक मिनट इधर आइए मेरे साथ, उसको लेके गई अंदर में। अंदर का जब दरवाजा खोला इस बार ठाकुर जी गायब। अब ये सब जगह ढूंढ रही है, पलंग के नीचे, पलंग के पीछे, दरवाजे के पीछे। उसका पति बोल रहे है तुम क्या ढूंढ रही हो। बोला मैं आपको ढूंढ रही हूँ। बोला क्या, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम मुझे ढूंढ रही हो, तुम पागल हो गई हो, बैठो थोड़ा आराम से। तो मैं आपको कैसे बताऊँ, अभी तो आप आए, आपने खाना खाया, आप कमरे में गए, आपने कुछ लिखा। जयदेव गोस्वामी बोला एक मिनट चुप रहो। तो जयदेव गोस्वामी ने इमीडिएटली खोला कहाँ है उनके जो पत्ते जिसपे वो लिखते थे, तब उन्होंने खोला वो पत्ता, तो देखा कि जो लाइन वो लिखने के लिए डर रहे थे ठाकुर जी ने खुद वो लाइन लिख दी, देही तव पाद पल्लव उदार श्री राधे। तब जयदेव गोस्वामी क्या हुआ, पद्मावती बोल के वो, अब पद्मावती को तो आदत ही था, जब पद्मावती बोले तो पद्मावती बुला रहे, पद्मावती मतलब अभी वो बेहोश होने वाले, वो तकिया लेके रेडी है, यस प्रभु आई एम रेडी। अभी गिर गए उसकी गोद में, तकिया वकिया लगा दिया, उसको हवा दे रही है, आदत हो गई। अब उसकी पत्नी थी तो उनको तो पता ही है, जब पद्मावती बोलते मतलब गिरने वाले हैं अभी। तब बोला थोड़ी देर के बाद भी जब उनको होश आया, तब बोले कि किसने लिखा, तुमको समझ में आया कुछ बात, किसने लिखा होगा कोई मैजिशियन। तब वो एकदम उठ गए, बोलते वही बात राधा रानी ने कृष्ण के लिए बोली थी, कृष्ण एक मैजिशियन है, साइड हटो चलो मुझे और लिखना है, लिखने लगे। तो ऐसे इतनी सुंदर सुंदर कहानियां है, कैसे गीत गोविंद भगवान को इतना प्रिय था, वो खुद ही जो है दिखा देते थे लीला, वो जो चाहते थे कि जयदेव गोस्वामी लिखे। तो एक बार जयदेव गोस्वामी को ऐसा ख्याल आया कि मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन अगर ये जगन्नाथ जी को ऑफर करे, अगर उनके सी गीत गोविंद है क्या, गीत गोविंद इज सॉन्ग ऑफ सेपरेशन। राधा रानी को कृष्ण को राधा रानी के लिए जो विरह, राधा रानी को कृष्ण के लिए जो विरह, विरह का गीत है वो। तो उन्होंने सोचा कि जगन्नाथ जी का रूप क्या है, द्वारकाधीश कृष्ण जो राधा रानी के विरह में रो रहे हैं वो जगन्नाथ है। तो अगर उनको ये गीत गोविंद के जो वर्स है उनको अर्पण किए जाए तो वह कितने खुश होंगे। तो सोचा कि पर ये मैं पत्ते वत्ते अगर जगन्नाथ जी को लगा दूंगी तो उनको चोट लगेगी, तो मैं ऐसा करता हूँ ये पूरा गीत गोविंद एक कपड़े में लिख देता हूँ, इस कपड़े में लिखने के बाद वो कपड़ा जो है ठाकुर जी को शाल के जैसे उड़ा देंगे। अच्छा है, वो अपने गांव गए केंदु बिल्वा, वहाँ पे कुछ दर्जियों को पकड़ा, बोला मैं बोलूँगा आप लोग उसको जो है वीव करते हैं ना, वीवर्स जो है उसको आप छापते रहो। बोला ठीक है, बहुत सुंदर से चल रहा है काम, वो बोल रहे हैं और ये लोग सब जो है उसका सिलाई कर रहे, वीविंग कर रहे, सारे गीत गोविंद के जो अलग अलग वर्सेस है वो सारे कपड़े में होता जा रहा है। मैंने सुना था सात आठ पूरी पूरी साड़ियां लग गई वो सारे गीत गोविंद के वर्सेस लिखने में, तो वो लिखते जा रहे हैं। अब उस बीच में गीत गोविंद में जो वर्स नहीं था, जो था ही नहीं श्लोक, ऐसा कोई श्लोक जयदेव गोस्वामी के मुँह से निकल गया, शायद ठाकुर जी की प्रेरणा थी। अब वो श्लोक का मतलब ये था कि कंस के जो दुश्मन है माने कृष्ण, कंसारपि संसारम, कंस के जो दुश्मन है कृष्ण, उनका हृदय राधा रानी के प्रेम से ऐसा बंधा हुआ है कि 60 करोड़ गोपियों को रास करते हुए छोड़ के वे राधा रानी के लिए पीछे चले गए, राधा रानी को खोजने के लिए चले गए। इतनी है महिमा हमारी राधा रानी की। 60 करोड़ गोपियों को छोड़ दिए रास में, ठाकुर जी राधा रानी के पीछे पीछे चले गए। ऐसी है हमारी राधा रानी। अब जयदेव गोस्वामी ये शब्द आधा पूरा करते हुए फिर से मूर्छित हो गए। दर्जी लोगों को तो आदत ही था, जब भी वो मूर्छा होते हैं टी ब्रेक, वो थोड़ा मूर्छा के बाद में आएंगे तब तब तक थोड़ा चाय वाय पी लो फिर वो उठ जाएंगे। अब इस बार वो ब्रेक ले रहे कि ये तो मूर्छित है उठेंगे, तब देखा कि कोई और जो है गीत गोविंद गाता हुआ उधर आ रहा है बहुत सुंदर तरीके से। तो बोला रे तुम इधर आओ, अभी तक तो ये गीत गोविंद के छपा भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, तुमको कहाँ से पता चल गया कितना सुंदर तुम गा रहे हो। बोलते ये क्या बड़ी बात है, मेरे को इसके बाद में क्या लिखना है वो भी पता है। तो तू कैसे पता है? मैं तो सब जानता हूँ। सब जानने का मतलब क्या है? बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली मैं जयदेव गोस्वामी का बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम कृष्णदेव है, जयदेव का बड़ा भाई कृष्णदेव। बोलता अच्छा बहुत अच्छा, तो फिर हमारा काम जल्दी हो, क्योंकि ये भाई साहब तो घड़ी घड़ी मूर्छित हो जाते, हमारा काम रुक गया, आप बोलो हम फटाफट कर लेते हैं। अब कृष्णदेव गाने लगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, पूरा कंप्लीट हो गया गीत गोविंद। और उसके बाद जब वो लास्ट में कर रहे तब ये उठ गए, अब बोले अरे ये उठ गए, तब तक हमारे कृष्णदेव गायब। अब जयदेव गोस्वामी बोले अच्छा तो कहाँ थे हम लोग? नहीं कहाँ थे नहीं, हो गया। हो गया मतलब मेरी रचना है, मेरे और मेरी पत्नी के सिवाय किसी को पता भी नहीं है ये रचना। तो नहीं नहीं वो आपके बड़े भाई आए थे। कौन बड़ा भाई? मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है इस दुनिया में। नहीं आपके बड़े भाई आए थे ना कृष्णदेव, उन्होंने सब बता दिया। फिर जयदेव गोस्वामी बोले अच्छा अच्छा तो ठाकुर जी आके खुद ही डिक्टेट करके चले गए। अब जयदेव गोस्वामी सोच रही मैंने बना तो लिया सब, लेकिन अब परमिशन कहाँ से मिलेगी? ठाकुर जी जगन्नाथ जी को कुछ भी ऑफर करना है तो राजा की परमिशन मिलनी चाहिए। अब उस दिन जगन्नाथ जी ने क्या किया, राजा के सपने में आ गए। राजा को बोला कि मेरा भक्त जयदेव जो है मेरे लिए गीत गोविंद के सारे श्लोक वगैरह जो है एक साड़ी में वीव कर रहा है, तुम उसको लेके आओ, मुझे तो वही पहनना है, मैं तो वही पहनूंगा। फिर जो है राजा और केंदुबिल्व गांव में उसको ढूंढते ढूंढते आते हैं कि कहाँ है जयदेव, और फिर बोलते कि हमको जगन्नाथ जी ने भेजा है, लाओ दो तुम्हारी वो जो साड़ियाँ तुमने बनाई है दे दो। जयदेव गोस्वामी बहुत ही खुश, अब वो सारी साड़ियों को पालकी में बाजे गाजे के साथ एकदम सब कीर्तन करते करते हुए लेके जाते हैं जगन्नाथपुरी। और फिर वहाँ पे भगवान को रोज रात को जो है उसको गीत गोविंद लिखा हुआ को उड़ा देते। अब वहाँ के जो राजा थे पॉलिटिशियन वो लोग तो भक्त थे। अब एक दिन राजा आए मंगलारती में, मंगलारती में देखा कि ठाकुर जी पूरे फटे हुए कपड़ों में, मट्टी धूल एकदम, राजा एकदम सरप्राइज, क्योंकि पूरी में जो है स्पेशली रात का जो दर्शन होता है 12 बजे का बड़ा श्रृंगार बोलते हैं वो बहुत सुंदर करते हैं। इस बार हम जब पूरी गए थे हमको पुजारी ने बताया था कि आप लोग रात के 12 बजे के दर्शन में आओ, लेकिन हम जा नहीं पाए हम लोग। तो वो स्पेशली पुजारी बता रहा था कि रात को 12 बजे जो श्रृंगार होता है पूरा दिन में ऐसा श्रृंगार नहीं होता जो रात को 12 बजे, बहुत सुंदर फूलों से सजाते हैं। उल्टा है ना, किसी को भी सुबह सजाते हैं, सुबह दर्शनार्थी में सजाते, रात को सोने के टाइम पे क्यों सजाते? नहीं उसके पीछे कारण ये है कि रात को जाते हैं ना रासलीला करने के लिए सारे गर्लफ्रेंड्स को मिलने के लिए, इसलिए अच्छा से सजाते, नहीं सजाए तो डांट लगाएंगे पुजारी को, मुझे मिलना है 60 करोड़ गोपियां खड़ी एकदम परफ्यूम डाल के एकदम बढ़िया से सजाते हैं। तो इसलिए रात का जो 12 बजे का सजना होता है एकदम बढ़िया से सजा के उनको रखते हैं। तो अब मंगलारती में तो सुबह आप देखोगे तो अच्छे लगेंगे, लेकिन इस बार देख रहे हैं फटे फूटे कपड़े हैं। राजा ने पुजारी को बुलाया, तुम्हारा माथा खराब हो गया, क्या किया तुमने, पूरा धूला मट्टी फटे हुए कपड़े। पुजारी एकदम पूरा शिवर हो रहा है, मेरा विश्वास करें मैंने कुछ नहीं किया, जैसे हमेशा बड़ा श्रृंगार होता है वैसा ही बड़ा श्रृंगार हो रहा, मुझे पता नहीं कहाँ से ये फूल वूल सब निकल गए। अब राजा ने बोला कि मैं ये बात को मानता नहीं हूँ, उस पुजारी को जो है कारागार में डाल दिया कि तुम कहीं तो तुम्हारी केयरलेसनेस हुई है। अब उस दिन रात को राजा के सपने में जगन्नाथ जी आए। अब ये बात सुनने में आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन दिनों में जो राजा थे पुरी के वो इतने अच्छे भक्त थे, बहुत बार जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं, हर चीज़ उनको बताते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राजा के सपने में जगन्नाथ जी आए और उनको बताया कि भाई पुजारी की कोई गलती नहीं है, रोज के जैसे मेरा बड़ा श्रृंगार किया था। लेकिन पद्मा नाम की एक लड़की है दूर एक गांव में, जो रोज रात को बेगुन का जो ये होता है, गार्डन होता है, उसमें बेगुन तोड़ने जाती है रात को। और जब वो बेगुन तोड़ने जाती है तो वो गीत गोविंद गाती है, और मुझे तो गीत गोविंद सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। लेकिन मेरे शरीर से जो चंदन और अगरू की सुगंध आती है ना, वो घड़ी घड़ी पीछे देखती है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है क्या, इतनी सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही है, और कभी कभी मेरा छाया देख लेती है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, वो जितना बार पीछे देखते मैं छुप जाता हूँ। अब मैं जब छुप जाता हूँ ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कांटे हैं, वो कांटों से मेरा कपड़ा जो है फट जाता है। और जब तक कि मैं उसके पीछे पीछे पूरा गीत गोविंद सुनूंगा, सुबह सुबह पुजारी यहाँ पे शंख बजा देता है। अब उसने शंख बजाया और अगर मैं नहीं हूँ अल्टर में तो सबको चिंता हो जाएगी, इसलिए मैं भागता भागता पहुँचता हूँ। कभी कभी गिर जाता हूँ तो लग जाती है नाक पे, इसलिए सब मट्टी मट्टी हो गया मैं। राजा ने बोला, आप ऐसे मत जाइए ठाकुर जी, आपको जो चाहिए मैं यहीं अरेंजमेंट करूँगा। तो जगन्नाथ जी बोले, मुझे तो उसी से सुनना है, मैं तो पद्मा से ही सुनूंगा, वो जितनी भक्ति से गीत गोविंद गाती है मैं तो उसी से सुनूंगा। अब राजा ने बोला, ठीक है हम ढूंढते वो पद्मा कहाँ है। अब वो पूरे राज्य में ढूंढे वो पद्मा कहाँ है, वो लड़की जो गीत गोविंद गाती है। और फिर ढूंढ के उसके पूरे परिवार को जगन्नाथपुरी में लेके आए। बोले, आपको राजा सब कुछ देगा, रहने की जगह, खाना पीना सब कुछ, कुछ नहीं करना है, बस रोज रात को आपकी बेटी जो है पद्मा, उसको जगन्नाथ जी के पास भेजो, वो गीत गोविंद गाएगी और जगन्नाथ जी सुनेंगे। समझ में आ रहा है ना कि जयदेव गोस्वामी द्वारा रचना की गई ये गीत गोविंद भगवान को कितना प्रिय था, बहुत ही प्रिय था भगवान को। अब एक कलयुग की मैं कहानी बताऊं, रीसेंट कहानी। बहुत वर्ष पहले एक धनी आदमी रहता था पुरी में, और उसके घर में जो है चोरी हो गई। अब जब चोरी हुई तो चोरों ने, जो चार चोर थे, उन्होंने सब कुछ चोरी कर लिया। अब उसके साथ साथ उसके घर में शालिग्राम की शिला थी, वो भी चोरी कर ली। अब ये तो सब डकैत लोग हैं, इनको भक्ति शास्त्र ऐसा कुछ तो उनको पता रहता नहीं। अब चोरी करने के बाद जब सब कुछ वो लोग डिवाइड कर रहे थे, तुम इतना ले लो, ये तुम्हारा ये तुम्हारा, तब शालिग्राम शिला को देख के ये लोग बोलने लगे, इस पत्थर का क्या करें, ये तो कोई काम का नहीं लगता, ना हीरा है ना चांदी है ना मोती है, क्या है ये। अब एक दूसरे को डॉज करने लगे, तुम रख लो तुम रख लो। बोले, मैं क्यों रखूँ, इतने तुम रख लो, कोई रखना नहीं चाहता, इस पत्थर का करे क्या करे। अब एक उसमें समझदार था, बोला छोड़ो इसको, बेच के आते हैं, कुछ तो पैसा मिलेगा। अब वो लोग गए, एक अपना दिल पे हाथ रख लेना, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। अब वो लोग गए एक मोची के पास, बोले तुम लोगे इसको, काला पत्थर तुमको काम में आ जाए। मोची ने देखा ठीक है, इससे घिस के पॉलिश करने के लिए काम में आएगा। बोला कितना दोगे, ठीक है 10 रुपये दूंगा। 10 रुपये दिया, उसने ले लिया। उसका काम क्या है, जूतों को पॉलिश करना। अब वहाँ पे एक ब्राह्मण आ गया। अब वो ब्राह्मण जब अपना जूता पॉलिश करवा रहा था, वो गीत गोविंद गा रहा था, गीत गोविंद का जो मंगलाचरण है, श्रीता कामा, सुना ये, श्रीता कामला कुचा मंडल है द्रुत कुंडला है, ये फर्स्ट लाइन जो है उसकी गा रहा है। कलिता ललिता वनमाला जय जय देव हरे देव हरे, श्रीता कमला कुछ मंडला हे द्रिता कुंडला हे, कलिता ललिता वनमाला जय जय देव हरे हे देव हरे। अब ये मोची बहुत स्मार्ट था, उसने इमीडिएटली वो लाइन सीख ली, बहुत सुंदर लाइन है। अब वो क्या करता, जितना बार भी किसी का शूज जूता पॉलिश करता, बस वो यही गाते रहता, जय जय देव हरे। अब एक दिन एक ब्राह्मण वहां पहुंचा, जिसने थोड़ा करीब से देखा, ए तुम क्या कर रहे हो, वो क्या है वो, मुझे क्या पता, एक पत्थर किसी ने दिया। बोला, अरे ये पत्थर नहीं है, ये तो शालिग्राम की शिला है, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो पहले मेरे को दे दो। मैं क्यों दे दूँ, मैंने खरीदा है। मैं कितने में खरीदा, बोलते नहीं तुम कितना दाम दोगे, बोला तुम जितना बोले, बोला ठीक है मैंने 10 में खरीदा, तुम 20 रुपए दे दो मैं दे दूंगा, बोला 20 नहीं ये लो 50 लो मेरे को पहले वो दे दो शालिग्राम। उसने फटाफट से वो शालिग्राम शिला लिया, घर गया, सब गंगा से दही दूध पंचामृत से अभिषेक किया, रोने लगा रोने लगा, वो ठाकुर जी कैसे कैसे आपके साथ हो जाता है, कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो आप। और फिर उसको वहाँ पे जो है भगवान का अभिषेक किया, पुरुष सूक्त श्री सूक्त रोज ऑफरिंग, इतना सुंदर से भगवान का सेवा करने लगा। चार पाँच दिन के बाद भगवान उसके सपने में आए, बोला एक्सक्यूज मी इफ़ यू डोंट माइंड मेरे को मोचे के पास वापस दे दोगे क्या। बोला क्या, बोला नहीं वो गीत गोविंद गाता है तुम नहीं गाते हो, वो गीत गोविंद गाता है तुम नहीं गाते हो गीत गोविंद। उसको तो चक्कर आ गया, बोला नहीं नहीं मैं गाऊंगा, मेरे पास रहिए इफ़ यू डोंट माइंड मैं गा सकता हूँ क्या, मतलब कोई भी गाओ बस गीत गोविंद गाओ, गीत गोविंद बहुत अच्छा गाता था वो, मतलब आपको जो पॉलिश करता मतलब वो सब मुझे चलेगा, मेरे को गीत गोविंद चाहिए। तब से वो बोले लगा ठीक है मैं सुबह दोपहर शाम में रोज गीत गोविंद गाऊंगा, आप मेरे पास ही रहिए। तो अब समझ में आया ना ठाकुर जी के लिए गीत गोविंद वो मोची के पास जाके रहने के लिए भी तैयार थे। इमेजिन करिए ये जयदेव गोस्वामी कितने शुद्ध भक्त होंगे जिनकी रचना पे ठाकुर जी का इतना प्यार है, उसकी की हुई रचना पे इतना प्यार है। तो फिर इस तरह से जयदेव गोस्वामी की काफी कहानियां है। एक बार जयदेव गोस्वामी का जो भजन है सुन के लक्ष्मण सेन बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होके क्या करते हैं, उनको सोना चांदी बहुत सारी मोहरे सारे जो बुलक कार्ड्स होते हैं ना उसमें भर भर के तो सब लेते हुए वो जा रहे। एक्चुअली वो तो वैरागी है, वो उसके पीछे वो बुलक कार्ड्स भेज दिया तो वो देख भी नहीं रहा है अपना चला जा रहा है। तो उसके गाँव जब वो वापस जा रहे हैं तो कुछ रास्ते में जो डकैत जो होते हैं डाकू वगैरह, डाकू लोग देखते रहे ये तो बहुत ज़्यादा पैसा वैसा लेके जा रहा है, तो एकदम वो लोग आके जो उसको अटैक करते हैं। अब जयदेव गोस्वामी बोलता है इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ले लो मेरे को तो नहीं चाहिए। वो आप इतना जैसे वो दिखाते हैं ना बॉलीवुड मूवी में हैंड्स अप, उतना सब करने की जरूरत ले लो जो चाहिए ले लो मैं चला अपना मेरे को भजन। ये लोग फटाफट सब कुछ ले लिया। एक चोर के मन में बात आई, ये अभी तो बोल रहा है कि सब ले लो, शायद ये भी इसका कोई प्लान है क्योंकि राजा का बहुत फेवरेट है, अगर जाके राजा को हमारा नाम कंप्लेन कर दिया कि हमने चोरी किया तो प्रॉब्लम होगा, चलो इसको मार डालते हैं। जयदेव गोस्वामी को पीछे से पकड़ा, दोनों हाथ काटे और कुएं में फेंक के चले गए। अब दोनों हाथ जब काट दिए तब जयदेव गोस्वामी देखा, जब हाथ कट जाते हैं तो कैसा होता है आपको समझ में आता है ना, जब हाथ काट देते तो कैसा लगता है, उसको जगन्नाथ जी का रूप याद आ गया, जगन्नाथ जी का दोनों हाथ वो मूर्छित हो गया, हम रोते रोते जगन्नाथ जगन्नाथ बोलते हुए। अब कुएं में उसको डाल दिया था, जब उसको होश आया वो जितना बार होश आता अपने हाथ देखता फिर जगन्नाथ को याद करता और गीत गोविंद गाता। अब एक दिन बहुत दिनों के बाद लक्ष्मण सेन राजा उसी जगह से गुजर रहे थे, देखा इतना सुंदर मधुर आवाज कहाँ से आ रहा है, तो ढूंढते ढूंढते गए, बोला राजा यहाँ तो एक खाली कुआ है पानी भी नहीं है, सबने झुक के देखा तो अंदर में जयदेव गोस्वामी। अब राजा ने उसको जल्दी जल्दी से बाहर किया और अपने महल में लेके गए, वहाँ सारी चिकित्सा वगैरह करवाई, उनकी पत्नी पद्मावती को भी खबर दी, उनको भी वहाँ पे बुला लिया। अब दोनों वहाँ रहने लगे। राजा को एक बात की खुशी थी कि मैंने बहुत बार बोला था मेरे साथ राजभवन में रहो लेकिन ये कभी नहीं रहे, अब इस सिचुएशन के वजह से मुझे चांस मिला उनकी सेवा करने के लिए, तो उनके साथ रहने लगे। अब उनको राज पुरोहित घोषित किया गया, उनको राज पुरोहित बना दिया, अब वो जैसे बोलते वैसे करते। अब राजा ने बहुत बार बोला कि आप तो ठाकुर जी के इतने शुद्ध भक्त हैं, अगर आप मांगो कि ठाकुर जी मुझे मेरे हाथ वापस चाहिए, भगवान ऐसे ही दे दे, आप क्यों नहीं मांगते। अरे मुझे तो कोई विशेष उपयोग नहीं लगता हाथ का, भगवान को तो मन से याद करना है मुँह से गाना, मेरे हाथ का मेरे को क्या करना, मेरे को नहीं चाहिए। अब राज पुरोहित थे तो राजा को गाइड करते थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक दिन जयदेव गोस्वामी ने बोला देखो एकादशी का अगर तुम्हें पूरा पूरा फल प्राप्त करना है तो द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ तो तुम्हारा एकादशी का फल मिलेगा। तो उसने लक्ष्मण सेन ने सबको बुला दिया कि मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण हैं सब आइए, सबको मैं आज दान दूंगा। अब वो जो चार डाकू थे जिन्होंने जयदेव गोस्वामी का हाथ काट दिया था, बोला अरे बहुत अच्छी बात है राजा खुद देने वाले हैं, तो बन गए ब्राह्मण, पहन लिया ब्राह्मण थ्रेड, बन गए ब्राह्मण और उस चेंज करके लाइन में लग गए दान के लिए। अब जब दान दे रहे हैं तो जयदेव गोस्वामी यहाँ बैठे हैं, पास में लक्ष्मण सेन है और दान दे रहे हैं। जब ज्यादा पास में आ गए तब डाकू ने देखा, अरे ये तो वही है जिसका हाथ हमने काट दिया। अरे अब तो फंस गए, अब तो वो बता देगा राजा को कि ये लोग ही है जो मेरा हाथ काट रहे हैं। अब एस्केप होने का भी कोई चांस नहीं है, वो लोग हिल रहे, तो सैनिक बोल रहे हैं सीधे खड़े रहो, प्रॉब्लम क्या है, सीधे खड़े रहो, तुम्हारा अभी बारी आएगी, कहाँ जा रहे हो। अब सीधे खड़े हैं डर डर के, डर डर। जब लक्ष्मण सेन के पास आ गए तब जयदेव गोस्वामी की नज़र उन पर पड़ गई, उन चारों पे। तो उन्होंने हंस के लक्ष्मण सेन को कहा, ये मेरे विशेष है, सबको जितना दिया उससे 100 गुण ज़्यादा इनको दे दो। लक्ष्मण सेन ने बोला, ठीक है आप जैसे बोलो। तो उनको 100 गुण ज़्यादा दिया। अब लक्ष्मण सेन को जयदेव गोस्वामी ने बोला, दान भी ज़्यादा देना और एक काम करना, जंगल में डाकू बहुत होते हैं ना, कोई उन्हें अटैक ना करे इसलिए साथ में सिपाही भी भेज देना, थोड़ा सा सेफली उनको जो है घर तक पहुंचा देना। लक्ष्मण सेन ने बोला, ठीक है। अब उनको सब कुछ जितना दान दिया था सारे बुलक कार्ट्स में डाला, सब सिपाही वगैरह उनको एस्कॉर्ट करके लेके जा रहे हैं। जब थोड़ा सा डीप जंगल में चले गए तब एक सिपाही ने ऐसे ही बातें करते करते पूछा, ये तुम्हारा कोई जान पहचान वाला है क्या जयदेव गोस्वामी, सबको तो कम कम दिया, तुम लोग को बहुत ज़्यादा दिया, क्या क्या है तुम लोग कोई। अब डकैत वो लोग जो डाकू लोग हैं सोच रहे क्या बोले, तो बोला, हाँ हाँ हमारे जान पहचान का है, एक्चुअली पहले वो भी डाकू ही था, हमारे साथ ये सब डकैती के काम करता था, अब जाके राजा का बड़ा पुरोहित बन के बैठ गया है। अब उसको डर लग गया कि कहीं उसकी पुरानी वाली बात हम राजा को बता ना दे, इसलिए हमारे मुंह चुप करने के लिए उसने हमको ज्यादा दान दिया, लेकिन वो था पहले एक डकैत। अब धरती माता जो होती है उनको सबसे ज्यादा वजन कब लगता है, जब कोई भक्त की निंदा करते तो उनको सहन नहीं होता है। तो धरती माता का इतना आक्रोश हुआ वहां की वहां जंगल में, धरती फट गई है चारों के चारों अंदर। सैनिक लोग डर गए, ये तो क्या हो गया यहाँ पे, वो भागे फिर से महल की ओर की, देखिए राजा ऐसे ऐसे हो गया। राजा को भी समझ में नहीं आया, राजा जयदेव गोस्वामी की तरफ देख रहा है कि भाई शायद उनके कोई होंगे, उनको दुख लगेगा। फिर जयदेव गोस्वामी ने पूरा वृत्तांत बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग जो है डाकू थे, इन्होंने मेरा हाथ काटा था। और फिर सिपाही बताते हैं कि कैसे आपके बारे में निंदा कर रहे थे। तो फिर लक्ष्मण सेन को समझ में आता है कि क्योंकि शुद्ध भक्त की निंदा कर रहे थे, धरती माता ने उनको गल लिया। अब राजा के साथ वो लोग रहते थे, तो जयदेव गोस्वामी की जो पत्नी थी पद्मावती, साधारण महिलाएं महिलाओं के साथ ही एसोसिएशन करना है, तो वो राजा की पत्नी के साथ में ही उठना था, बैठना, खाना करती थी। एक दिन राजा की पत्नी ने एक बात बोल दी। राजा की पत्नी ने बोला कि देखिए, कुछ दिनों पहले मेरे भाई का देहांत हो गया, अब आप देखिए मेरी भाभी जो है कितनी महान पतिव्रता नारी है, जब मेरे भाई का देहांत हो गया तो मेरी भाभी बिना झिझक के सती बन गई, आग के अंदर में उसने प्रवेश कर लिया, अपने पति के साथ वो चिता में प्रवेश कर लिया। ऐसी होती है पतिव्रती, पतिव्रता नारियां ऐसी होती है। पद्मावती ने बोला, ये क्या पतिव्रता नारी है, आग की क्यों जरूरत पड़ी उसको मरने के लिए, सच में पतिव्रता नारी होती ना तो जैसे उसको पता चलता है कि उसका पति नहीं रहा, वहां के वहां प्राण छोड़ देगी, आग की क्या जरूरत है, ऐसी होती है पतिव्रता नारी। अब रानी को थोड़ा सा ये आया, अच्छा बहुत बड़ी बातें कर रही है, इसको चेक करते हैं ये कितनी पतिव्रता नारी है। तो एक दिन क्या हुआ, राजा के साथ में जयदेव गोस्वामी कहीं बाहर गए थे। अब उन दिनों में शिकार पे जाना जो है कॉमन होता था, क्रूर प्राणियों को जो है राजा मार देते थे, तो वो लोग शिकार पे चले गए। अब इन्होंने सारा ड्रामा किया, रानी ने बोला अपनी सब दासियों को, तुम लोग ऐसा एक्टिंग करो, भाग भाग के आओ, बोलो जयदेव गोस्वामी मर गए। अब ये लोग पूरा एक्टिंग करते हुए आए, भागे, अरे पद्मावती आपको क्या बोले, आपके पति मर गए। राजा के साथ शिकार करने के लिए गए थे, किसी क्रूर प्राणी ने उनको खा लिया। अब जैसे पद्मावती ने ये बात सुनी, क्या वो नहीं रहे, सीधा नीचे जमीन पर। अब रुई लगा के देखा, कोई प्राण नहीं है, निष्प्राण, साथ ही साथ प्राण त्याग कर दिया। अब रानी को डर लगा, अब जब राजा वापिस आएगा, जयदेव गोस्वामी वापिस आएंगे, मैं क्या बोलूँगी, कैसे छोटे बच्चों वाला काम किया ना मैंने ऐसा टेस्ट करना। अब जब राजा और जयदेव गोस्वामी वापिस आते हैं, उनको ये सब खबर मिलती है कि रानी ने उसका टेस्ट लिया और ये सब हो गया। राजा को इतना गुस्सा आया, बोला ऐसा पवित्र भक्त की पत्नी को तुम ऐसा टेस्ट करोगी? अब राजा ने तलवार लिया और उसका गला काटने के लिए भागा, अपनी पत्नी का गला काटने के लिए भागा। अब जब उसकी पत्नी का गला काटने के लिए भागा, जयदेव गोस्वामी को आज तक कभी डिजायर नहीं था कि मेरे हाथ होने चाहिए। उसको उस मिनट के लिए लगा, ठाकुर जी मुझे हाथ होते ना तो मैं बचा लेता इसको, मेरे पास हाथ क्यों नहीं है। अब भगवान तो वेट ही कर रहे थे कि कब मांगोगे तुम। अरे दिया, हाथ दिया, मांगा तो। भगवान जो है उद्धव के, उद्धव गीता में क्या बोलते हैं, ठाकुर जी तो ऐसे वेट ही करते रहते शुद्ध भक्त के पीछे, एक बार तो कुछ मांगो, एक बार तो कुछ मांगो। ठाकुर जी खुश, मांगा तो इसने, लो तुमको दे दिया हाथ। अब जैसे उसके हाथ आ गए, उसने राजा को रोक दिया, बोला नहीं नहीं आप ऐसा मत करिए, आपकी पत्नी को मत मारिए। अब जयदेव गोस्वामी जो है जोर से चिल्लाए थे ना, राजा रुक जाओ। अब जैसे उन्होंने जोर से चिल्लाया राजा रुक जाओ, उनकी जो पत्नी जिनका मृत शरीर वहां पड़ा था वो फिर से सजीवन हो गई, बोले प्रभु आप आ गए, मैं भी आ गई। आप आ गए, मैं भी आ गई। बहुत सुंदर एक पवित्र रिश्ता था दोनों का। तो फिर जयदेव गोस्वामी अपने पत्नी से कहते हैं कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, हम चलते हैं हमारे गांव, हम वापस चलते हैं। फिर लक्ष्मण सेन महाराज को बहुत दुख लगता है, अपनी पत्नी को बहुत कोसते हैं कि एक शुद्ध भक्त का साथ हमें मिल रहा था लेकिन तुम्हारे बचपने के वजह से अब वो हमें छोड़ के चले गए। अब जयदेव गोस्वामी का अपने स्पेशल एक विग्रह थे, नाम जानते हैं, राधा माधव। हम जब जयपुर गए थे, हमने दर्शन किया, गए थे ना जयपुर कनक वृंदावन, वहाँ पे जयदेव गोस्वामी के जो विग्रह है। अब इसकी भी बहुत सुंदर कथा है, कैसे जयदेव गोस्वामी का जो गांव था केंदु बिल्व, कभी कभी वहाँ से थोड़ा सा दूर उनको चल के जाना पड़ता था नहाने के लिए। अब जब वो थोड़े से वृद्ध हो गए तो उतना चलना उनके लिए मुश्किल होता था, गंगा में जाके स्नान करते थे। अब उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया, कहीं और घर के पास की नदी में स्नान करने लगे। अब गंगा सोचती है कि ऐसे शुद्ध भक्त मेरे पानी में स्नान नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, तो गंगा आ गई उनके घर के पास। और अभी भी आप जाओ केंदु बिल्व गांव में, आप देख सकते हो पास में ही, और फिर वहां पे वो स्नान करते। तो एक दिन अजय नदी में वे स्नान कर रहे थे। जब वे स्नान करके जो है पूजा करते थे तो देखा कि पैर के पास कुछ छुआ है, तो ये क्या है क्या है, देखा तो राधा माधव का विग्रह, माधव थे उनके हाथ में। और फिर तब से जयदेव गोस्वामी जो है राधा माधव की पूजा करने लगे। कुछ जगहों में ऐसा भी लिखा है कि वो राधा माधव को लेके वृंदावन गए थे और वहाँ पे केसी घाट के पास में राधा माधव की पूजा करते थे, और कुछ दिनों बाद वे वापस अपने गांव चले गए। लेकिन ये जो राधा माधव के विग्रह है उनको जयपुर के राजा ने वृंदावन से लेके गए और जयपुर में उनका मंदिर बनाया। तो अभी भी जयदेव गोस्वामी के जो ओरिजिनल विग्रह है आप उसका दर्शन कर सकते हो। आप जयपुर जाओ, उसको गुप्त वृंदावन बोलते हैं ना जयपुर को, क्योंकि सारे गोस्वामी लोग की ओरिजिनल डिटेल्स जयपुर में है और वृंदावन में प्रतिभू विग्रह है। तो ये कनक वृंदावन जगह का नाम है, वहाँ आप जयदेव गोस्वामी के विग्रह को देख सकते हो। तो ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं जयदेव गोस्वामी की, स्पेशली उनकी रचना की गई हुई गीत गोविंद का बहुत महत्व है। आज के दिन में भी अगर आप जगन्नाथपुरी में कोई अपना जीवन भगवान को, जगन्नाथ जी को समर्पण करना चाहे तो उनको गीत गोविंद लिखा हुआ कपड़ा उनके सिर पे बांधते हैं। जैसे हमारी दीक्षा होती है ना, जैसे हमारी गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा होती है तो हमको नाम दिया जाता है, वैसे वहाँ पे गीत गोविंद लिखा हुआ कपड़ा उनके सिर पे बांधा जाता है, जो जगन्नाथ जी को अपना जीवन अंकित करते हैं। तो गीत गोविंद का एक विशेष महत्व है। एक बार ये गीत गोविंद का बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा होता था। लक्ष्मण सेन महाराज, क्योंकि जयदेव गोस्वामी को वो बहुत प्यार करते थे और गीत गोविंद रचना का, उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बिठा के इसकी कॉपीज बनवाई थी और सब जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था हर घर में। और लक्ष्मण सेन महाराज बंगाल के थे और पुरी के महाराज जो गजपति महाराज और साउथ इंडिया के गंगा चोला, ये तीनों ही बहुत अच्छे वैष्णव थे और वे इतना एग्रेसिवली प्रचार करते थे। मैंने सुना कि लक्ष्मण सेन महाराज तो हमेशा तलवार लेके रेडी रहते थे, अगर कोई कृष्ण को जगन्नाथ को नहीं मानता तो मारने के लिए तैयार, बस मतलब सबको भगवान को कृष्ण को मानना, एकदम पक्के भक्त थे। मतलब ऐसा नहीं वो हिंसा करते थे, मतलब उनको अवकाश देते थे कि आप भगवान के बारे में, लेकिन जो एकदम नास्तिक लोग हैं उनको वो वार्निंग देते थे, उनको मारते थे। तो उन्होंने क्या किया था, गीत गोविंद के बहुत सारे कॉपीज बना के उन्होंने सब जगह सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उनके कोर्ट में जयदेव गोस्वामी बैठे हैं, बहुत सारे साधु लोग बैठे हुए हैं, और गीत गोविंद में से वो एक पर्टिकुलर सॉन्ग है, एक गीत गोविंद में से एक पर्टिकुलर सॉन्ग है प्रिय चारुशीला। प्रिय चारुशीला वो गीत गोविंद का 19th सॉन्ग है, 24 सॉन्ग्स में से 19th सॉन्ग है। तो प्रिय चारुशीला गीत गा रहे थे और उसी में वो लाइन आती है, देही तव पाद पद्म उदार, ये जो देही तव पाद पद्म राधा रानी को जो बोला है उस गाने में ही वो आती है। अब जब वो गा रहे हैं, सारे सुन रहे, वाह वाह कितनी सुंदर है आपकी रचना, कितनी सुंदर है। जब उस लाइन पे आ गए ना, जहाँ पे राधा रानी को अब रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम्हारे पैर दे दो, जयदेव गोस्वामी ने सोचा कि ये लोग जो यहाँ सब बैठे हुए हैं, ये लोग अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं, उस लाइन को गलत मतलब निकालेंगे, क्यों ना मैं इस लाइन को स्किप करके आगे बढ़ जाऊँ। तो उन्होंने क्या किया, उस लाइन को स्किप करके आगे बढ़ गए। अब उनको क्या पता है, उनकी तो रचना है नहीं, तो वो लोग अच्छा अच्छा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब उस सभा में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये एक चीटर है, ये एक चीटर है, ये एक चीटर है। लक्ष्मण सेन ने बोला, कौन है, कौन ऐसा बोल रहा है जयदेव गोस्वामी के बारे में, क्या तुम क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं नहीं ये एक चीटर है, इसने सबको चीट किया है। क्या चीट किया? बोला आप उसको ही पूछो उसने क्या चीट किया है। उसकी रचना में से उसने दो लाइन नहीं गाई है, उसका मतलब रचना में कुछ तो भूल है। मैं तो बोलूं ऐसे लोगों का शास्त्र पढ़ना नहीं चाहिए, इसको डालो गंगा में, इसको डालो गंगा में बहा दो। वो पकड़ के क्या करता है, गंगा में फेंक देता है। अब जब वो गंगा में फेंक देता है, लक्ष्मण सेन महाराज को इतना, बहुत सारी कॉपियां है ऐसा नहीं है, पर उसको गुस्सा आता है कि कौन ऐसा अपमान कर रहा है। तो लक्ष्मण सेन महाराज क्या करते हैं, एकदम तलवार लेके उसको मारने के लिए जाते हैं। जयदेव गोस्वामी बोलते हैं, एक मिनट, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, मैंने ऐसा किया है, मैंने दो लाइन बीच में नहीं गाई है। अब जब ये सब चल रहा है, वहां क्या हो रहा है, जो गीत गोविंद को गंगा में फेंक दिया था, वो गंगा के बहाव के विपरीत उल्टी दिशा में तैरता हुआ वापस आ रहा है। और वो सब देख के साधु लोग एकदम, ओहो उसका मतलब गंगा माता ने भी इस शास्त्र को जो है स्वीकार कर लिया है। तो अब क्या हो गया, जयदेव गोस्वामी का लिखा हुआ गीत गोविंद को और भी मान मिलने लगा। अरे वाह ये तो बहुत है, तो गंगा ने भी इसको मान लिया है। और फिर तब तक लक्ष्मण सेन बोलते कि वो बूढ़ा गया कहाँ, जिसने ये सब काम किया, बूढ़ा गायब। कौन था वो बूढ़ा? जगन्नाथ जी, जान मुझ के कि अरे सब देखो इसकी गीत गोविंद की वैल्यू क्या है। अब बहुत सालों बाद लक्ष्मण सेन महाराज जब नहीं रहे, जयदेव गोस्वामी भी नहीं रहे, उनका गीत गोविंद तो प्रचलन है, तो नए महाराज जब आए, लक्ष्मण सेन के बेटे पुरुषोत्तम देव, तो उन्होंने सोचा कि अरे इतना बचपन से सुनता हूँ गीत गोविंद, जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है, लेकिन वो जयदेव गोस्वामी का है, मैं अपना गीत गोविंद लिखूँगा, न्यू एकदम अलग से, अभिनव गीत गोविंद, नया। तो उन्होंने क्या किया, अभिनव गीत गोविंद लिखा। और पुजारी लोगों को बोला, बट ये लो मेरा अभिनव गीत गोविंद, जाके जगन्नाथ जी को दो, बहुत सुंदर लिखा है। अब पुजारी लोग राजा को कैसे मना किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से हम लोग जयदेव गोस्वामी का ही गीत गोविंद रखते हैं। अब पुजारी लोगों ने क्या किया, रात को सोने से पहले जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद रखा वहां पे, और ये नया अभिनव गीत गोविंद वहां पे रखा, दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह जब जाके खोला, तो जो जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद था वो जगन्नाथ जी के हृदय के पास में रखा हुआ है, और अभिनव गीत गोविंद के सारे टुकड़े टुकड़े करके सब जगह पड़े हुए हैं। अब ये लोगों ने पूरा वहाँ पे ऑल्टर साफ किया और राजा को जाके विनम्र भाव से बोला कि आपका अभिनव गीत गोविंद तो भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसने सोचा, ठीक है अगर मेरा गीत गोविंद भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया तो अब जी के क्या करें, मर जाना ही ठीक रहेगा, जब मेरा सर्विस ही भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने भी तो प्रेम से लिखा था। अब वो चले गए समुद्र के अंदर, मतलब मैं अब डूब जाऊंगा, मुझे और जीना ही नहीं है। अब जैसे वो समुद्र के अंदर 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 जाने लगे, जगन्नाथ जी वहां पे खुद आया, उसको बाहर निकाला, बोला आगे तुम मर जाओगे, पूरी का कोई राजा नहीं है, पूरी को देखेगा कौन, तुम ऐसे मत करो। पता नहीं मेरे को जीना ही। सी इमेजिन करिए, उन दिनों में राजाओं का जगन्नाथ जी के साथ का रिश्ता देखिए, जगन्नाथ जी के साथ भी कंडीशन, बोल तुमने आपने तो मेरा माना नहीं, मेरा गीत गोविंद तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर मैं क्यों आपका ये पूरी, आप ही चला लो आपका पूरी प्रदेश, आप ही चला लो, मैं गया। वो अंदर जा रहा है, भगवान बाहर निकल रहे, वो अंदर जा रहे। ठाकुर जी ने बोला एक मिनट, चलो एक अग्रीमेंट करते हैं, पूरा पूरा नहीं लूंगा, थोड़ा लूंगा तो चलेगा? चलेगा चलेगा, थोड़ा लेने से भी चलेगा. बोला ठीक है, फिर तुम्हारा ये जो अभिनव गीत गोविंद है मैं उसमें से 12 श्लोक लूंगा, बस यही ट्रीटी. बोला हाँ ठीक है, चलो निकलो बाहर. फिर वो बाहर निकला, अब खुश. अब वो 12 श्लोक अभिनव गीत गोविंद के जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद के साथ मिला दिया. अब हमें पता नहीं है वो 12 श्लोक कौन से हैं, क्योंकि वो मिक्स हो गया है. तो कौन सा पुरुषोत्तम देव महाराज का था उसमें से 12 श्लोक हमें पता नहीं, लेकिन ऑल टुगेदर वो सब जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद जैसा ही माना जाता है. तो ऐसा गीत गोविंद का जयदेव गोस्वामी ने बहुत प्रचार किया. वे और अपनी पत्नी के साथ जाते थे, और जिस तरह से हम लोग को इस्कॉन में एक ये है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, हम लोग कितना एग्रेसिवली, वैसे वे भी जो उन दिनों में गीत गोविंद का प्रचार बहुत एग्रेसिवली कर रहे थे, राइट फ्रॉम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मध्य प्रदेश, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे उन्होंने गीत गोविंद का प्रचार नहीं किया. वे सब जगह जाते, गीत गोविंद की कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट करते, उसके बारे में बताते, और पद्मावती जो है वो नृत्य करके गीत गोविंद की प्रस्तुति करती, और ऑल ओवर. और इसीलिए अगर आज के दिन में भी आप देखो तो बहुत सारे साउथ इंडियन टेम्पल में भी गीत गोविंद गाया जाता है, गीत गोविंद गाया जाता है. मैंने सुना था कि वे सारे ओनली वैष्णव मंदिर में जाते थे, जयदेव गोस्वामी और पद्मावती, और वहाँ पे गीत गोविंद का प्रचार करते थे. लेकिन साउथ इंडिया में जो मीनाक्षी मंदिर है, वो मीनाक्षी देवी खुद वहाँ पे जयदेव गोस्वामी और पद्मावती को रिक्वेस्ट करने गई थी कि मेरे मंदिर में भी आओ, यहाँ भी तुम इसका जो है प्रचार करो. तो इसलिए हम देखें तो काफ़ी, आप देखो पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे रात को ठाकुर जी को सुलाते समय जो है गीत गोविंद गाया जाता है. तो ऐसा बहुत सारी अद्भुत कथाएं हैं, गीत गोविंद बहुत ही सुंदर भजन है. तो इस तरह से गीत गोविंद का बहुत प्रचार हुआ. और जयदेव गोस्वामी के शरीर छोड़ने के बारे में तो बहुत सारी अलग अलग बातें कही जाती है. कोई कहते हैं कि वे वृंदावन में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, कोई कहते हैं कि नहीं नहीं उन्होंने जगन्नाथपुरी में शरीर छोड़ा, कोई कहते हैं कि उन्होंने अपने गांव में ही केंदुबिल्वा में शरीर छोड़ा. लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि नहीं, जगन्नाथपुरी में गीत गोविंद गाते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा. और जैसे में कि मैं बता रही थी कि गीत गोविंद की विशेषता ये है कि इट इज़ ए सॉन्ग ऑफ सेपरेशन, और उसमें जो लीलाएं बताई गई है, राधा रानी जब कृष्ण के विरह में होती है तो उनके विचार क्या है, क्या होता है, और लक्ष्मण सेन महाराज के जो कोर्ट था, सभा थी, उसमें रोज गाया जाता था. और कुछ लोग उनके सभा में ऐसे भी थे जो जयदेव गोस्वामी से ईर्ष्या करते थे, और वो सोचते थे कि शायद वो अच्छा से गाता है ना, इसलिए लक्ष्मण सेन को बहुत पसंद है, क्योंकि लक्ष्मण सेन महाराज को संगीत पसंद है. तो इसलिए वो कभी कभी क्या करते थे, कुछ अच्छे संगीतकार को लेके आ जाते थे कि इसको हम लेके आएंगे ना तो जयदेव गोस्वामी से उनका माइंड थोड़ा सा हटेगा, तो अलग अलग संगीतकार. तो एक बार उनकी ही सभा में कोई अपनी बहू को लेके आ गया था, बोला मेरे बहू बहुत अच्छा गाना गाती है और आप एक बार उनसे सुनिए. अब लक्ष्मण सेन तो डिवोटी है, उन्हें संगीत से या कोई स्पेशलाइज्ड क्लासिकल म्यूजिक से कोई विशेष प्रेम नहीं था, उन्हें तो जिस गाने में कृष्ण का नाम आए वही गाना उसको पसंद था. लेकिन जब ये लाए हैं तो बोला ठीक है गाओ. अब सच में ये इतनी सुंदर गायिका थी, जब वो गाने लगी सबके होश उड़ गए, और जब उसका गाना खत्म हुआ तब कोई आदमी बहुत भागते हुए आया, घबराया हुआ, बोला मैं बर्बाद हो गया. तो फिर लक्ष्मण सेन ने बोला क्या हुआ, बहुत अच्छे राजा थे वो भी, अपने सिंहासन से उतरे, बोला क्या हुआ क्या हुआ. बोला कि आपकी सभा से जो सुंदर गाना निकल रहा था उसके वजह से क्या हुआ, बोलता मेरी जो बहू जो कुएं में गई थी पानी लेने के लिए, अब पानी लेने के लिए क्या करना पड़ता है, आप बकेट को नीचे डालो उसके बाद में पानी लो. बोलते मेरी बहू ने क्या किया, बच्चे को नीचे फेंका, बकेट को गोद में ले लिया. उतना सुंदर ये गा रही थी, तो अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया. अब लक्ष्मण सेन ने फिर जयदेव गोस्वामी की तरफ देखा, बोला अब क्या किया जाए. तब जयदेव गोस्वामी ने जो है अपने दशावतार स्तोत्र से ये गाया, केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, सब भजन में लीन हो गए सभा में। और फिर जयदेव गोस्वामी ने उसके बीच में वो गाना रोका और बोला, निकल गया बच्चा कुएं से बाहर, जाके ले लो। बोला क्या? बोला हाँ, निकल गया बच्चा, जाके ले लो। अब वो जो लेडी थी जो बहुत सुंदर गा रही थी, उसका नाम था विद्युतपुरा, तो वो भी शौक हो गई और सब वहाँ गए उस स्थल में, और देखा सच में वो बच्चा बाहर में कुएं से बाहर में आके बैठा है। अब लक्ष्मण सेन महाराज बहुत सरप्राइज हो गए। तो जयदेव गोस्वामी ने बोला कि मैंने भगवान को प्रार्थना की, हे केशव धृता मीन शरीरा, भगवान आपने मीन शरीर में क्या किया था? मीन शरीरा माने मत्स्य रूप में, फिश इंकार्नेशन में क्या किया था? सारे वेद को भगवान ने रक्षा की थी एकदम बच्चे के जैसे। किससे रक्षा की थी? प्रलयन नदी से रक्षा की थी। तो मैंने इसलिए भगवान को प्रार्थना किया कि जिस तरह से प्रलयन नदी से आपने उन शास्त्रों की, उन वेदों की रक्षा की, वैसे इस शिशु की भी आप रक्षा करिए। तो फिर तब से ये लोगों ने होप छोड़ दिया कि अरे हाँ, हम कितने भी बड़े संगीतकार को लेके आ जाए, जयदेव गोस्वामी के साथ कोई नहीं पार सकता। फिर थोड़े दिन के बाद में फिर भूल गए वो विद्युतपुरा के साथ क्या हुआ था। फिर किसी और को लेके आ गए उड़ीसा से, उनका नाम था मिश्रा। अब मिश्रा को लेके आ गए हम। अब मिश्रा जी थोड़ा पान वान खाते थे, उसको देख के ही लक्ष्मण से इनको मतलब इसको क्यों लेके आ गए, नहीं ये बहुत अच्छा गाते हैं, और ये जब गाते हैं तब जो पत्ते होते हैं झाड़ के ऊपर से वो गिर जाते हैं, आग लग जाती, बारिश हो जाती है, तो ठीक है गाओ। गाने लगे। अब उन दिनों में किसी को जस्टिस करना है तो उसके लिए सभा अलग होती है, जब गाना वगैरह एंजॉय करना है राजा का तो अलग से कोर्टयार्ड होता है जहाँ पे वो बैठते हैं, अपनी रानियाँ भी सुनती है, वो लेटे हुए जो है गाना सुनते हैं। तो अब लक्ष्मण सेन राजा लेटे हुए हैं, रानियाँ भी बैठी है, सब बैठे हैं, और मिश्रा जी ने गाना शुरू किया, और सच में उसका गाना इतना पावरफुल था कि वहाँ पे जितने भी पत्ते थे वो सारे झाड़ से खर गए, और खरे ही नहीं, उसके गाना में एक ऐसा एजिटेशन था कि वहाँ पे जो हवा थी वो हवा में आग लग गई, और सारे जो पत्ते गिर गए सब में आग लग गई, और जब मिश्रा जी उठे तो सारी आग बंद कर दी। अब सारे उसको जो है क्लैप्स क्लैप्स क्लैप्स, कितना सुंदर ये किया। तो अब लक्ष्मण सेन महाराज ने बोला कि संगीत से कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करने में कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ क्रिएट करो तो बड़ी बात है। फिर जयदेव गोस्वामी की तरफ देखा, फिर जयदेव गोस्वामी ने अपना गीत गोविंद शुरू किया। अब उन्होंने गीत गोविंद में से एक ऐसा गीत चुना जिसमें लिखा हुआ था कि राधा रानी एक दिन कुंज में बैठी है और कृष्ण का इंतजार कर रही है, कृष्ण अभी तक आए नहीं है। क्योंकि वो आए नहीं है तो पिछले दिन जब कृष्ण से मिली थी तब क्या क्या हुआ उसको याद कर रही थी। अब याद करते करते उसको एक बात याद आई कि जब रात को जब रासलीला होती है तो रासलीला में जो मधुर भगवान जो बजाते हैं वेणु, वेणु के साथ में स्टेप मैच होने चाहिए। तो सारे गोपियों का स्टेप मैच हो रहा था लेकिन राधा रानी का स्टेप मैच नहीं हुआ। नहीं हुआ तो ठाकुर जी ने अपने दोनों सुंदर नेत्र से राधा रानी की तरफ ऐसा देखा, मतलब कि ये क्या है, तुमने सही से स्टेप क्यों नहीं लिया, ये गलत स्टेप हो रहा है। तो राधा रानी ये सारी बातें सोच सोच के मन में हंस रही थी कि मैंने गलत स्टेप लिया, मतलब ऐसा लिखा हुआ है गीत गोविंद में। जयदेव गोस्वामी जो देख रहे लीला को और ठाकुर जी मेरे तरफ देख रहे थे कि ये स्टेप तो सही नहीं है, और ऐसे सोचते सोचते पहले तो दुख कर रही थी कि कृष्ण अभी तक आए नहीं, और फिर जब कृष्ण की ये मीठी सी बात याद आ गई तो हंसते हंसते खुशी से जब राधा रानी वहाँ पे जितने पेड़ वगैरह है उसके तरफ देखना शुरू करती है तो सारे पेड़ों में नए नए पत्ते खिलना शुरू हो जाते हैं, सारे पेड़ों में फल आ जाते हैं, सारे पेड़ में बड़े बड़े फूल उगना शुरू हो जाते हैं। जहाँ जहाँ राधा रानी देखती है वहाँ वहाँ फूल उग जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट गीत गोविंद में एक गाने में जयदेव गोस्वामी ने लिखा था और वो वहाँ पे गाने लगते हैं, और जैसे वो वहाँ पे गाने लगते हैं लक्ष्मण सेन महाराज की सभा में जहाँ जहाँ वो पत्ते गिर गए थे सब वहाँ नए नए पत्ते फूल सब आने लगता है। फिर लक्ष्मण सेन बोलते हैं ये है ऐसा भक्ति भक्ति गीत जहाँ पे ठाकुर जी को अगर हम याद करें तो सब कुछ जीवन में शुभ होता है। सही बात है ना, जब हम गाना गाते हैं तो हमारी आवाज़ कितनी मधुर है या हम कितने ट्यून जानते हैं उससे ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितने गंधर्व वहाँ पे भगवान के लिए गाते रहते हैं, हम कितना सुंदर गाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कितना भाव से गाते हैं ठाकुर जी हमारा भाव देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर हम हमारे अंदर में जाग के देखें तो हम जितना बार भी गाते हैं 50% ऑफ द टाइम दूसरे क्या सोचेंगे मैंने कैसे गाया वो माइंड में हमेशा रहता है। तो इसीलिए हम एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि जैसे कोई क्राउड देखेंगे तो हमें माइक लेना बहुत अच्छा लगता है, अभी गाएंगे। अब दोपहर को जब मंदिर बंद रहता है 1 to 4 मैंने कभी नहीं देखा कोई बैठ के गाता है। एक्चुअली अब गा किसके लिए रहे हो, वो तो 1 to 4 भी वो वहीं बैठे हैं, शाम को भी वहीं बैठे हैं, सुबह भी वहीं बैठे हैं, उनके लिए गाना है तो एकांत में भी गा सकते हो। गाना हमें उनके लिए नहीं है, गाना हमें दूसरों के लिए है। इसलिए क्राउड हो तो हमारी गानी बहुत अच्छी बदल जाती है, एकांत में हो तो हम कोई गाना वाना नहीं गाते। तो यहाँ इस पूरे वृत्तांत से सबसे सुंदर बात, टेक होम बात है कि भगवान का भजन करे तो उसमें भाव होना चाहिए। भगवान भाव के प्यासे है। गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी का भाव था जो भगवान को इतना उनकी तरफ खींचता था, जहाँ कोई गीत गोविंद गाते तो भगवान चल पड़ते। तो ये हमारा एक टेक होम लेसन है, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं। तो यहीं पे एंड करूँगी, हम ये छोटा सा भजन गा के यहीं पे एंड करेंगे और उसके बाद रथ यात्रा के कुछ अनाउंसमेंट्स मुझे करना है। और श्रीता कमला कुचा मंडलाए, धृत कुंडलाए, श्रीता कमला कुचा मंडलाए, धृत कुंडलाए, कलित ललित वनमाला, जय जय देव हरे, देव हरे, कलित ललित वनमाला, जय जय देव हरे, देव हरे। सब साथ में गाए, दीनमणि मंडल मंदनाए भवकंदनाए, मुनि जन मानस हंसा, जय जय देव हरे, हे देव हरे, कालिया विषाधर गंजनाए जनरंजनाए, यदुकुल नलिन दिनेशा, जय जय देव हरे, हे देव हरे, मधुमुर नर कविनाशनाए गरुड़ासनाए, सुरकुल केलिनिदाना, जय जय देव हरे, हे देव हरे, अमल कमल दल लोचनाए भवमोचनाए, त्रिभुवन भुवन निधाना, जय जय देव हरे, या देव हरे, जनक सुता कृत भूषणाए जित दूषणाए, समर समीत दशकांत, जय जय देव हरे, हे देव हरे, अभिनव जलधर सुंदर ये धृतमंडराए, श्रीमुख चंद्र चकोरा, जय जय देव हरे, हे देव हरे, तव चरणं प्रणतावय मे इति भावय, कुरुकुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे हे देव हरे श्री जय देव कावेरई दमये कुरुते मुदामे मंगल उज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे हे देव हरे गीत गोविंद की श्रील जयदेव गोस्वामी की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण थैंक यू वेरी मच
सब कृष्णा 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 लगे सब कृष्णा